ओम शांति। काफी देर से बैठे हुए थे, खड़े हो जाएं और थोड़ा एक्टिविटी कराएंगे। मेरे साथ मनीषा बहन है जो फिजियोथेरेपिस्ट है, जो हमारा सीनियर सिटीजन होम है उसके फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की इंचार्ज हैं। तो आपको अलग अलग मूवमेंट से बॉडी को कैसे एक्टिव करना स्ट्रेचिंग बताएंगे। वेरी गुड। जो सब्जेक्ट है तनाव और खुशी, डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तनाव एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बॉडी का रिस्पॉन्स है। ऐसा देखा गया है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज गुड फॉर हेल्थ। थोड़ा तनाव शरीर को एक्टिवेट करता है और शरीर को हेल्दी रखता है, पर जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तब वो नुकसान करता है। हम शॉर्ट टाइम में बार बार अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करेंगे, लेट गो करेंगे और खुशी को अंदर लाएंगे। एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें जापान जो जापानीज रहते हैं उनको फिश, फ्रेश फिश बहुत अच्छी लगती है। तो जो मछुआरे थे वो फ्रेश फिश पकड़कर लाते थे और मार्केट में देते थे। धीरे धीरे लोगों ने कहा टेस्ट नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने एक आइडिया निकाला, फिश को कैच करके फ्रिज में रखना शुरू किया, बोट में ही, नाव में, शिप में, और लोगों को मार्केट में लाकर देने लगे। फिर भी लोगों की कंप्लेन रही कि टेस्ट ओरिजिनल नहीं आ रहा है। फिर इन्होंने एक्वेरियम फिश टैंक रखना शुरू किया, उसमें फिश को पकड़कर टैंक में रखते थे और मार्केट में लाते थे। थोड़े दिनों बाद कहा कि अभी फिर टेस्ट नहीं आ रहा है। फिर सबने क्रिएटिव थिंकिंग किया और छोटा शार्क फिश टैंक में डाला और फिर लोगों को ओरिजिनल टेस्ट आने लगा। क्या हुआ? जब शार्क को रखा तो क्या हो गया? सर्वाइवल के लिए उन्होंने अपने को सेफ करने के लिए भागना शुरू किया, मूवमेंट करना शुरू किया। और जैसे ही मूवमेंट होता है पूरा बॉडी का सिस्टम ट्रिगर होता है। जब कभी भी कोई घटना होती है, चाहे बाहर से चाहे अंदर से, हमारा माइंड, ब्रेन और बॉडी पूरा एक्टिव हो जाता है और बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन पैदा होना शुरू होता। तो यहां भी वही हुआ, जब फिश ने सर्वाइवल के लिए मूवमेंट किए तो बॉडी के सिस्टम एक्टिवेट हो गए। तो इसीलिए कभी भी नेगेटिव स्ट्रेस से घबराए नहीं। तनाव हर व्यक्ति को हर जगह पर आता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मेरे को तनाव नहीं आता। जीरो स्ट्रेस इज अ डेथ। इसीलिए जब ईसीजी किया जाता है, हार्ट का ईसीजी करते हैं, ईसीजी ऐसा चलता है, कभी भी ईसीजी फ्लैट नहीं आता। फ्लैट ईसीजी का अर्थ है डेथ। तो परमात्मा ने भी हमारी जो बॉडी की डिजाइन की है वो हर तरह के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सिस्टम को डिजाइन किया गया है। बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं, जब तनाव आता है तो वो डायलेट होती हैं, चौड़ी होती हैं और प्रॉब्लम को ठीक करती हैं। अगर ब्लड वेसल डायलेट नहीं होए, केवल कंस्ट्रिक्ट हो जाए तो हार्ट अटैक आता है। और आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम पिछले 2 सालों में यंग हार्ट अटैक कॉमन होता जा रहा है। ये कभी नहीं था पहले। अब यंग हार्ट अटैक क्यों कॉमन हो रहे हैं? क्योंकि जो वेगस नर्व हार्ट को सप्लाई करती है वो ओवर एक्टिव हो जाती है और जो ब्लड वेसल है कोरोनरी आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और यंग हार्ट अटैक कॉमन हो रहे हैं। और उसका कारण है इमोशनल स्ट्रेस इज बिकमिंग नंबर 1 कॉज फॉर एनी इलनेस। बीमारी का मुख्य कारण अब 90% से भी ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस। मेरा फील्ड कैंसर का है और राइट नाउ ब्रेस्ट कैंसर इज नंबर वन कैंसर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसका भी कारण है हमारे हार्मोन का डिसफंक्शन। जो दो हार्मोन हमारे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वो इम्बैलेंस होते हैं, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द सेल्स होता है और कैंसर शुरू होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। जो मैकेनिज्म ऊपर से चलता है वो ऑन हो जाता है और वो सेल्स को ग्रो करता है। तो जितनी भी इलनेस है राइट नाउ उसका मुख्य कारण ओवर थिंकिंग, लोनलीनेस, इमोशनल स्ट्रेस है। कोरोना के बाद जो नया प्रॉब्लम आया वो आ गया है एंजाइटी और अनसर्टेनिटी का, और उसके कारण तरह तरह के फेस हम सभी देख रहे हैं। पिछले मैंने दो महीने में देखा, जो मैं टीवी पर देख रहा था, एक्सीडेंट एंड यंग हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गए। और एक्सीडेंट भी मैं देख रहा हूं उसका कारण वो व्यक्ति खुद था, और उसका भी कारण यही है कि कहीं ना कहीं उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कम हो गया। स्ट्रेस का पहला कारण है ओवर क्राउडिंग ऑफ थॉट्स, प्री ऑक्यूपाइड माइंड। हमारा मन जो है ओवरफ्लो हो रहा है, कई तरह की फाइलें खुली हुई है, और उसके कारण जो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, डिसीशन पावर है, वो कम हो गया। तो पहली डेफिनेशन स्ट्रेस की हो गई, इट इज अ रिस्पॉन्स टू एनी सिचुएशन इन द बॉडी। दूसरा डेफिनेशन है डिमांड मोर है और रिसोर्सेस मेरे पास नहीं है। इट इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड रिसोर्सेस। तीसरा है एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं और रियलिटी डिफरेंट है। रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन खुशी। रियलिटी कुछ है, अपेक्षाएं बहुत हैं तो तनाव करेगी करेगी। अभी रिसेंटली दो सुसाइड मैंने देखे, वो बच्चे ने सुसाइड इसलिए किया कि कहीं ना कहीं जो वो बनना चाहता था वो नहीं बन पा रहा था। उसको बनना था सिंगर और म्यूजिशियन और पेरेंट्स ने कहीं और भेजा, उस फ्रस्ट्रेशन के कारण उसने सुसाइड किया। सुसाइडल टेंडेंसीज आर आल्सो बिकमिंग वेरी मच, और उसका भी कारण है कहीं ना कहीं जो खुद से हम खुश रहना चाहिए वो नहीं है। हम खुद से ही कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं और उसके कारण हमारी खुशी गायब होती जा रही है, और जब खुशी गायब होती है तो बीमारी आती है। खुशी यात्रा के साथ है, यात्रा के अंत में नहीं है। हम सब सोचते हैं जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे सेटल हो जाएंगे, तब मैं खुश होऊंगा, पर वो समय आता ही नहीं है। जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो बच्चे बाहर सेटल हो जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मां बाप अकेले। अब लोनलीनेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, अकेलापन। अकेलापन केवल फिजिकल नहीं है, अकेलापन इमोशनल और थॉट्स का है। मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं लोनली फील कर रहा हूं, और उसका कारण है कहीं ना कहीं जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं अंदर, वो मेरे को प्रॉब्लम दे रहे हैं। मदर टेरेसा से किसी ने पूछा था, सबसे बड़ी गरीबी कौन सी है? विच इज द टेरिबल पॉवर्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ? तो मदर टेरेसा ने कहा था दो। पहला कहा था लोनलीनेस, अकेलापन, और दूसरा कहा था बिंग अनलव्ड, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। और ये मेजर प्रॉब्लम बन रहा है, लोनलीनेस और बिंग अनलव्ड, और कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी सुनता नहीं है, तो कई तरह के बीमारियां आती है, डिप्रेशन भी आता है। और डिप्रेशन इज बिकमिंग नाउ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, और ये कंटिन्यू रहा तो डिप्रेशन विल बी द मेजर प्रॉब्लम इन मेडिकल साइंस। इसीलिए जरूरी है हम अपने अपने तरीके को डेवलप करें, अपने को इम्पावर करें, इमोशनली स्ट्रांग करें। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो मैंने अभी पिछले 6 महीने में देखी अलग अलग कॉलेजेस में जाकर, जो बच्चों के सामने आ रही है, वो इमोशनली स्ट्रांग हमें उनको बनाना पड़ेगा। नॉर्मली अवर थॉट्स कंट्रोल अवर इमोशन, अब क्या हो रहा है, अवर इमोशंस आर कंट्रोलिंग अवर थॉट्स। हम लोग इमोशनली सेंसिटिव होते जा रहे हैं। मैं अभी जो देख रहा हूं, एक नया जनरेशन आया है, वो जनरेशन है टच मी नॉट, मुझे टच नहीं करो, मुझे कुछ नहीं बोलो, और इसके कारण हम वीक होते जा रहे हैं। तो पहला रास्ता है खुद को खुश रखें, खुद से अच्छी बात करें, सेल्फ टॉक को अच्छा डेवलप करें। हाथ उठाएं, राइट हैंड ऊपर करें और कहें आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटिफुल। अपने को एक्सेप्ट करें, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। फिर से हाथ उठाएं, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। अपनी कंपैरिजन किसी से नहीं करना है, अपनी कंपटीशन किसी से नहीं करना है। मैं अपनी कंपटीशन खुद से करता हूं, किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट, हर एक में परफेक्शन है, हर एक में इम्परफेक्शन है। उसके कारण मेरे में गिल्ट नहीं आए। मनुष्य का दूसरा दुश्मन, सेकंड एनिमी आफ्टर नेगेटिव थॉट, सेकंड दुश्मन है गिल्ट। कभी भी किसी भी कारण से गिल्ट नहीं आए। कोई आप में क्रिएट करे फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करो। साइकोलॉजी का मेन प्रिंसिपल है मेरा सेल्फ वर्थ, सेल्फ स्टीम, और मेरी सेल्फ स्टीम अच्छी है, सेल्फ वर्थ अच्छा है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं अभी देख रहा था इस साल के नीट एग्जाम में, एक यंग गर्ल छत्तीसगढ़ की, छोटे से गांव में पैदा हुई, फादर के साथ ब्रिक्स बनाती है दिन में और रात को 6 घंटे पढ़कर झोपड़ी में नीट एग्जाम क्रैक किया और अब मेडिकल कॉलेज में एंट्री मार रही है MBBS करने। नो कोचिंग, कोई कोचिंग नहीं करी, खुद का खुद उसने पढ़ाई करी। सेल्फ वर्थ, सेल्फ वर्थ। अगर सेल्फ वर्थ अच्छी है तो मैं कहीं पर भी पहुंच सकता हूं। डॉक्टर मैक्सवेल, एक प्लास्टिक सर्जन अमेरिका के रहे, वो यंग गर्ल्स के ऊपर सर्जरी करते थे, जिनके फेस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ जाता था, वो गर्ल्स फील करती थी आई एम अगली, मेरा चेहरा ठीक नहीं है। ये उनकी प्लास्टिक सर्जरी करके उनको ठीक करता था। 100 में से 95 गर्ल्स ठीक हो जाती थी, आई एम ब्यूटिफुल आफ्टर सर्जरी, पर फिर भी 5 गर्ल्स कहती थी आई एम अगली। फिर इसने उनकी रिसर्च करी, डीप डाउन गया, व्हाई दे आर फीलिंग स्टिल अगली, तो देखा कि उनका जो मेंटल सेटअप था, जो बचपन का प्रोग्रामिंग था, वो नेगेटिव था। हमारे अंदर कई तरह के प्रोग्राम जाते हैं, बचपन से लेके अभी तक हमारे अंदर कई तरह के प्रोग्राम गए हुए हैं, हमें उन प्रोग्राम्स को ठीक करना पड़ता है। चलिए खड़े हो जाएं और अभी हम करेंगे अपने नेगेटिव प्रोग्राम्स को रिलीज करेंगे, पॉजिटिव को अंदर आने देंगे। आई लव यू।
जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय।
Love you जिंदगी।
हमने अभी अपने नेगेटिव इमोशंस को, फीलिंग को रिलीज किया, लेट गो किया। जब कभी भी हम अपने अनवांटेड इमोशंस को सप्रेस करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम डिप्रेस होता है। जो मैंने देखा कैंसर का भी मुख्य कारण एक साइकोलॉजिकल फैक्टर, कहीं ना कहीं मैं उन फीलिंग्स को इमोशन को अंदर सप्रेस कर रहा हूं, उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा हूं और वो हमारे इम्यूनिटी को लो करती है। और जब कभी भी इम्यूनिटी लो होती है तो कोई भी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज मेजर रिक्वायरमेंट हो गया है हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, हमारा रेजिस्टेंस पावर अच्छा रहे। इसके लिए हमें फिजिकल तरीके, डाइट, वो तो सब करने हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट है इमोशनल इम्यूनिटी और उसको ठीक करना है। हमारे अंदर थिंकिंग ब्रेन है और इमोशनल ब्रेन है। आज ये देखा जा रहा है हमारा इमोशनल ब्रेन ओवर एक्टिव हो गया है और उसका कारण है टेक्नोलॉजी, फास्ट नेचर, जल्दीबाजी करना, प्री ऑक्यूपाइड माइंड। इसलिए जरूरी है बीच बीच में टेक्नोलॉजी से थोड़ा रेस्ट करें। ये नया एडिक्शन आ गया, पहले का एडिक्शन था टोबैको एंड अल्कोहल, वो आउटडेटेड हो गया क्योंकि सबको पता है टोबैको से कैंसर होता है। 30% कैंसर का कारण इंडियन कैंसर में टोबैको है। अल्कोहल हमारी इंटेस्टाइन और लीवर को डैमेज करता है, पता लग गया। अब ये नया जो आ गया है वो हमारे गर्दन को, हमारे स्ट्रक्चर को, मेंटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा है। इसलिए जरूरी है थोड़ा टाइम, 1 वीक उसको अलग रखें, मिनिमम 1 घंटा उसके बिना मैं सब काम करूं, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं। उतना ही यूज करो जितना जरूरी है, नहीं तो ये गर्दन के प्रॉब्लम, स्पॉन्डोलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, नी प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए फिजियोथेरेपी का रोल बढ़ता जा रहा है। शिवमणि हमारा सीनियर सिटीजन होम है नीचे, वहां पर वेटिंग लिस्ट लगी हुई है, लोग पे करके भी आना चाहते हैं। अब ये क्या दिखा रहा है, मैं एनालिसिस कर रहा था क्योंकि लोनली फील कर रहे हैं लोग, तो हम कुछ ना कुछ उस समय वो चीजें करें जो हमें अच्छी लगती है। ये पीरियड हरेक के पास आता है, वो उस समय जब फील करता है उसका सिस्टम डाउन होता है, तो उस समय हम कुछ पॉजिटिव चीजें करें, वो चीजें करें जो बचपन से अच्छी लगती आई है। मेरी हॉबीज है, मेरा मिशन है, पर्पस है, उसको करें। हम लोग मैकेनिकल नहीं है, मशीन नहीं है, हम ह्यूमन बींग है और ह्यूमन बींग के कारण कई तरह के हमारे अंदर थॉट्स चलते रहते हैं, फीलिंग्स चलती रहती है, उनको हम अच्छी तरह से चैनलाइज करें। अब मेजर जो प्रॉब्लम तीसरा देख रहा हूं, लोगों की खुशी गायब होती जा रही है। हैप्पीनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। लोगों को खुश होने के लिए कई जगह जाना पड़ता है, पर यहां पर हमने सीखा खुशी मेरे अंदर ही है। जितना मैं अंदर से खुश होऊंगा वो रिफ्लेक्ट करेगा बाहर, और हैप्पीनेस इज अ चॉइस। एक व्यक्ति सीनियर सिटीजन जिसकी वाइफ ने शरीर छोड़ा, सीनियर सिटीजन होम में जा रहा था रहने, वेट कर रहा था वेटिंग रूम में, अटेंडेंट उसको बता रहा था आपका रूम ऐसा है, कर्टेन नहीं है, बेडशीट टांगी हुई है, वो हर बात को कह रहा था वेरी गुड वेरी गुड। उस अटेंडेंट ने कहा आपने रूम नहीं देखा कुछ नहीं देखा फिर भी आप कह रहे हो वेरी गुड वेरी गुड। तो उसने कहा मैं हर दिन अपनी चॉइस बना लेता हूं, जो चीज मेरे सामने आएगी मैं उसमें खुश रहूंगा। तो परमात्मा जो हमें देता है वो अच्छा ही देता है, और उसको मेरे को देखना है, क्योंकि तनाव का एक मुख्य कारण है जो मेरे पास है उसको नहीं देख रहा हूं, जो नहीं है उसकी चिंता कर रहा हूं। एक व्यक्ति के पास इतना धन था कि 3 पीढ़ी तक खा सकती थी, फिर भी चिंता में घूमता था। लोगों ने कहा सर आपके पास तो इतना पैसा है कि 3 पीढ़ी तक खा सकते हो, बोला 4थी पीढ़ी की चिंता कर रहा हूं। तो हम अनवांटेड एरिया में घुसते हैं और उसके कारण दुखी होते हैं। चलिए फिर से खड़े हो जाएं। अब हम करेंगे लॉफिंग एक्सरसाइज। लॉफिंग इज ए एंटीडोट ऑफ स्ट्रेस। तनाव का मुख्य साधन खुशी है। खुशी रहेगी तो बॉडी में हैप्पी हार्मोन निकलेंगे, बॉडी में ऑक्सीटोसिन डोपामिन सीरोटोनिन निकलते हैं। इनकी लेवल अच्छी रहती है तो डिप्रेशन नहीं आता। ऑक्सीटोसिन की लेवल अच्छी होती है तो कैंसर नहीं होता। ऑक्सीटोसिन इज एंटी कैंसर हार्मोन। आज ये हार्मोन की लेवल्स कम इसलिए हो रही है कि हम लोग बहुत सीरियस हो गए हैं, जबकि हम सभी जानते हैं इस नाटक में मेरे हाथ में जो है उसको ठीक करूं, जो नहीं है उसको रिलीज करूं।
चलिए अभी हम लफिंग एक्सरसाइज करेंगे। इसमें दो दो पेयर बना लेंगे, आमने सामने हो जाएंगे दो, अगर 3 है तो भी चलेगा। जी हो गया। अभी आपको हाथ जोड़ना है सामने, एक दूसरे के सामने, और अच्छे से खुल के हंसना है आपको। वेरी गुड। एक दूसरे को देख के बहुत खुशी से मुस्कुराना है। बहुत अच्छा। अब एक दूसरे को उंगली दिखाते हुए कहते हैं ना देख लूंगा, तो हंसते हुए देख लेना है। वेरी गुड। अभी सामने टर्न होंगे।
धीरे 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 धीरे।
अभी थोड़ा डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेंगे थोड़ी। अभी मैं हा हा बोलूंगी विथ क्लैपिंग, आपको हो हो बोलना है क्लैपिंग के साथ। अभी ये करेंगे हम हा हा वेरी गुड। अभी रिलैक्स, थोड़ा डीप ब्रीथ। अभी एक लाफिंग एक्सरसाइज करेंगे, उसमें हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाना है और उसके साथ साथ में अपना हंसने की स्टाइल जो है वो बढ़ाते जाना है। पहले मैं दिखाती हूँ, पहले यहाँ तक है हा हा हा, पॉज, फिर थोड़ा सा हाथ ऊपर ले गए, फिर हंसना है हा हा हा, फिर ऊपर ले जाकर अच्छे से लंबा, ठीक है। चलिए हा हा हा, वेरी गुड। ऐसा ही ब्रेक के साथ हा हा हा, वेरी गुड, एक बार और, एक बार और लास्ट अच्छे से, वेरी गुड। अभी थोड़ी सी और डीप ब्रीथ, गहरी सांस अच्छे से नाक से लेंगे, अच्छे से एक्सहेल धीरे धीरे। अभी हमको लाउड लाफ करना है, अच्छे से खुल के हंसना है, हाथों को ऊपर ले जाते हुए लंबे से, चलिए वो वेरी गुड, फिर से एक बार और अच्छे से, मजा नहीं आया, वेरी गुड, लास्ट एकदम बेस्ट, हाँ वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाएंगे, क्लैपिंग, थैंक यू।
वो भी करा ही दो नेक्स्ट। अभी जो फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस है, और नी के प्रॉब्लम जो बढ़ते जा रहे हैं, उनको कैसे प्रिवेंट करें, हम ठीक करें, क्योंकि मनीषा बहन फिजियोथेरेपिस्ट है, आपको गाइड करेंगी।
वैसे आजकल कॉमन जो प्रॉब्लम आ रही है नेक से रिलेटेड है, क्योंकि मोबाइल, ऑफिस वर्क, बुक पढ़ते हैं, तो हमारा जो पोस्चर होता है वो प्रॉपर नहीं होता, तो जनरली ये कॉमन हो गई है। तो जो सिंपल जनरल एक्सरसाइजेस हम एडवाइस करते हैं वो भी करेंगे। तो सबसे पहले नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, इसमें आपको हाथ अपने यहाँ फॉरहेड पे रखना है और प्रेस करना है, मीन्स अपोजिट प्रेशर देना है आपको गर्दन को। अगर आप नीचे झुका रहे हैं तो हाथों से अपोजिट प्रेशर लगाकर आपको गर्दन स्ट्रेट ही रखना है। ये पोजीशन 10 सेकेंड तक हम होल्ड करेंगे, करेंगे सभी प्रेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, गर्दन सीधी होनी चाहिए, फिर से प्रेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, ऐसे ही राइट साइड अपोजिट प्रेशर, गर्दन स्ट्रेट, प्रेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, फिर से प्रेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, गर्दन स्ट्रेट। इसको मिरर के सामने भी खड़े होकर आप कर सकते हैं, ताकि आप देख सकें कि नेक का पोस्चर जो है वो करेक्ट होना चाहिए। प्रेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से प्रेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से बैकवर्ड प्रेशर, पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, प्रेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये चार एक्सरसाइज 5-5 times दिन में दो बार आप कर सकते हैं, ये प्रिवेंशन के लिए है, मसल स्ट्रेंथनिंग करेगी आपने आपके नेक की। लेकिन जिनको भी मेजर प्रॉब्लम है, जैसे चक्कर आते हैं और भी कुछ है, तो उसमें आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे की डायग्नोसिस MRI एक्सरे देखकर फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज बताई जाती है। तो आप जरूर कंसल्ट करें अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है फ्रोजन शोल्डर, इसमें हाथ ऊपर नहीं जाता, पीछे नहीं जाता, तो ये इसमें मूवमेंट में बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए सिंपल एक्सरसाइजेस है, इस तरीके से आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है, दोनों हाथों से पहले इधर करके फिर इस साइड से करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा ही राइट लेफ्ट मूवमेंट। अच्छा, बिल्कुल फ्रीली आपको घुमाना है। अगर स्टैंडिंग के लिए तो आप 1/2 kg या 1 kg का वेट या डंबल भी लेके इसको कर सकते हैं, बट ध्यान रखें कि ज्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए जब आप वेट के साथ में करते हैं। तो ये आपको आगे पीछे, ये 10-10 times आपको करनी है। फिर नेक्स्ट हम फ्रोजन शोल्डर के लिए बताते हैं वॉल लैडर एक्सरसाइज, दीवार के सहारे आपको हाथों को ऊपर ले जाना है। जिनके हाथ ऊपर नहीं जाते उनके लिए, और जिनके जाते हैं वो तो नेचुरल अपनी स्ट्रेचिंग कर ही सकते हैं। इस तरीके से जितना आप स्ट्रेच करेंगे तो आपका जो शोल्डर ज्वाइंट ही ऐसा ज्वाइंट है जिसको आपको मूवमेंट जरूरी है, अगर वो मूवमेंट नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे स्टिफ होने लग जाता है। तो इस तरीके से करना है, ये पीछे की स्ट्रेचिंग। अगर नहीं जा रहा है हाथ तो आप छोटा नैपकिन ले सकते हैं और नैपकिन को पकड़ करके इस तरीके से ये मूवमेंट आप कर सकते हैं। तो दोनों साइड से आपको करना है ये नैपकिन के साथ में, तो ये आपके शोल्डर ज्वाइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ाएगा। ये सिंपल है एक्सरसाइजेस है जो मॉर्निंग इवनिंग करनी है। और ये ध्यान रखना है कि जब भी शुरू करते हैं एक्सरसाइज तो थोड़ा पेन हो सकता है, लेकिन उस पेन से डरना नहीं है कि एक्सरसाइज की और पेन हो गया, वो पॉजिटिव पेन होता है। उसके लिए आप हॉट सलाइन फॉर्मेंटेशन कर सकते हैं। 3-4 दिन भी आप रेगुलर करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा बताए अनुसार, तो वो दर्द भी फिर चला जाएगा। ऐसे ही नी के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं। नी के कुछ कॉमन एक्सरसाइज आपको बताऊंगी। आप बैठेंगे, अभी चेयर पे बैठेंगे, अभी एक एक नी को एक्सटेंड करना है। सीधा करेंगे घुटना, हाँ एक एक। अब इसको 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेग्स। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से, ये नी की एक्सरसाइज। और जब आप लेटते हैं तो घुटने के नीचे पिलो रख सकते हैं और नी से उस पिलो को प्रेस करना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है। ये आइसोमेट्रिक नी एक्सरसाइजेस ये कर सकते हैं। साथ ही लेटकर ही घुटने को मोड़ना और सीधा करना। तो ये सिंपल कॉमन एक्सरसाइज है जो कि आप कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। मगर अगर ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो जरूर आप वहां पर आगे जाकर डॉक्टर से और कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस प्रॉपर MRI एक्सरे के बाद ही फिर आगे हम आपको एडवाइस करते हैं। तो इतना जरूर अपने डेली रूटीन में फॉलो करेंगे। चलिए अभी फिर से खड़े हो जाएंगे।
बैठिए। जो बताया और जो मैंने सीखा, एक रूमी माइथोलॉजी का स्टेटमेंट है, वॉट एवर इज फ्लेक्सीबल एंड फ्लोइंग दैट विल ग्रो नेचुरली, वॉट एवर इज रिजिड एंड ब्लॉक दैट विल विदर एंड डाई। जो चीज फ्लेक्सिबल है, फ्लोइंग है, वो चीज बढ़ती है। जो चीज रिजिड है, ब्लॉक है, वो खत्म होती है। इसीलिए लक्ष्मी को ऐसा दिखाया गॉडेस ऑफ वेल्थ को ऐसा दिखाया, करेंसी आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। लक्ष्मी भी कह रही है यूज इट, एंजॉय इट। पर हम अपने डरों के कारण, फियर, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी पकड़ते हैं। सर क्या कर रहे हो? डिपॉजिट कर रहा हूं। तो हमारा माइंड जीन्स को कहता है तू भी डिपॉजिट कर। हमारे जीन्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर कॉरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सीएडी नंबर वन किलर है। जब हमें ठीक होना है, अपनी हीलिंग करना है, मेडिसिन तो लेना है, चेकअप कराना है, पर यहां पर हमें फ्लो करना है। जितना ये ओपन होगा उतना एनर्जी फ्लो होगा। जितने हमारा एनर्जी चैनल्स खुलेंगे, मेरिडियन चैनल्स ओपन होंगे, उतना हीलिंग होगा। इसीलिए हेल्दी का अर्थ ही है हील दाय। हील दाय का अर्थ है कि हम सभी अपने को ठीक कर सकते हैं। और जब मेरा अपने ऊपर विश्वास है, फेथ है, तो मैं ठीक होऊंगा। प्रोफेसर स्टीफन हॉकलिंग एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं यूके में। 1963 में उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई, बॉडी टोटल पैरालाइज्ड हो गई, व्हील चेयर पर, और एवरीथिंग इज कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली, सब चीजें कनेक्ट की गई, फीडिंग भी सब कनेक्ट किया गया। फ्यू सेल्स इन द ब्रेन कुछ काम कर रहे थे और वो उन्हीं सेल्स से उन्होंने कई बुक्स लिखी। साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड रहे, ब्लैक होल थ्योरी निकाली। डॉक्टर्स ने कहा 2-3 साल, 1963, 2-3 साल। प्रोफेसर स्टीफन 2018 तक अच्छी तरह खुलकर जिए। क्यों जिए? क्या हुआ? डॉक्टर्स ने कहा 3-2 साल। क्या कारण था? हाँ बताइए, इंटरेक्ट करिए। यूजिंग द ब्रेन। और विल पावर। और पॉजिटिव थिंकिंग, होप, होप, नो फियर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, कॉन्फिडेंस, सब फैक्टर करेक्ट है। उनका वो क्वेश्चन था नहीं, क्योंकि मोटर न्यूरॉन डिजीज था तो जो सेंसरी सिस्टम था वो काम नहीं कर रहा था, जीरो था, टोटली सिस्टम डाउन था, 99% डाउन, ओनली 1%। उनका मेन था कि जो मेरा पर्पस है, मिशन है, उसको मेरे को एक्टिव रखना है। वो अपने पर्पस से, मिशन से काम करते गए। और जब हमारे में मिशन रहता, पर्पस रहता है, बॉडी हील होती है। इसका सेकंड बेस्ट एग्जांपल मेरे को अभी किसी ने दिया था, मिस्टर रॉकफेलर, अमेरिका के एक बहुत पावरफुल बिजनेस टाइकून रहे हैं, मिलियनर और बिलियनर रहे हैं, ऑयल रिफाइनरीज के मालिक रहे हैं। 37 इयर्स में ही उनके पास काफी ऑयल रिफाइनरीज आ गई थी। 53 इयर्स के जब हुए तो उनको एक इम्यून डिसऑर्डर आ गया। डॉक्टर्स ने कहा ज्यादा टाइम नहीं है। मिस्टर रॉकफेलर ने सोचा मेरे पास इतना पैसा है, क्या करूंगा। उन्होंने फिर अपने सभी सीएस को बुलाकर, अकाउंटेंट्स को बुलाकर ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट में पूरा पैसा डाला। और आज भी रॉकफेलर ट्रस्ट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ट्रस्ट है, जिसमें कई एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशन, हॉस्पिटल, हेल्थ, एजुकेशन के लिए पैसा अभी भी देते हैं। जैसे ही उन्होंने पैसा ट्रस्ट में दिया, 3 साल के अंदर वो ठीक होने लगे। और जो 53 ईयर ओल्ड थे, जिसको डॉक्टर्स ने कहा था कुछ साल, 98 ईयर्स तक फुली जिए। अब क्या हो गया, बीमारी कहां ठीक हो गई। जो पर्पस था, मिशन था, जो दुआएं थी, ब्लेसिंग्स था, वो उनको आने लगे। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारी बॉडी भी हील होती है। अगर हमारे थॉट्स पॉजिटिव हैं, पावरफुल हैं, पर्पसफुल हैं, तो शरीर ठीक होता है। हमारा हर थॉट पूरे यूनिवर्स में जाता है। मेरा हर संकल्प पूरे वर्ल्ड में जा रहा है और पूरे वर्ल्ड की आत्माओं से इंटरैक्ट कर रहा है। हर थॉट में एनर्जी और इंफॉर्मेशन है। हमारे बॉडी में 50-75 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर सेल में 1.4 वोल्ट प्लस माइनस का है। हर सेल कनेक्टेड है और मेरा हर थॉट एनर्जी और इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहा है। मेरे साथ वही हो रहा है जो मैं 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले, 6 साल पहले सोच रहा था, अब हो रहा है। क्योंकि हर थॉट अट्रैक्ट करता है, हर थॉट वाइब्रेशन क्रिएट करता है। हम कुछ नहीं है, हम वाइब्रेशन है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज वाइब्रेशन, एनर्जी। तो जितने वाइब्रेशन हमारे पावरफुल होते हैं, उतना हमारे साथ जो भी होगा वो पावरफुल ही होगा, अच्छा ही होगा। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी द सीक्रेट, या बुक पढ़ी होगी द सीक्रेट, उसमें भी बताया कि हर थॉट अट्रैक्ट करता है, पुल करता है और वो वाइब्रेशन देता है। तो अपने थॉट्स को पावरफुल बनाए, पॉजिटिव बनाए। दूसरा इसमें लगता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का अर्थ है जो मेरे पास है उसको मैं थैंक्स कर रहा हूं। पानी पी रहा हूं, थैंक्स कर रहा हूं। जैसे ही मैंने पानी पिया, मैं पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो गया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में पानी फ्लो कर रहा है और वो एनर्जी इस वाटर से पूरे यूनिवर्स में गई। जो चीज कर रहा हूं उसको थैंक्स कर रहा हूं। वो थैंक्स से, ग्रेटिट्यूड से और चीजें आएगी। कभी भी अपनी गरीबी के बारे में, पैसे के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, बीमारी के बारे में ज्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट ना करें। अगर मैं 100 लोगों को बोलता हूं मेरे को ये बीमारी है, 100 लोग थॉट्स क्रिएट होगा और वो बीमारी कम नहीं होगी, बढ़ेगी, क्योंकि वो थॉट्स मेरे पास आ रहे हैं। इसीलिए कभी भी अपनी सिकनेस को, इलनेस को, पैसे के बारे में ज्यादा डिस्कशन न करें। हमेशा कहें, फिर से हाथ उठाएं, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटिफुल, जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। एनर्जी फ्लो करेगी और आएगा। तो अभी हम ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज 5 मिनट करेंगे। मनीषा बहन आपको ग्रेटिट्यूड के ऊपर कराएंगी। बहुत डीप एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज है। आप अच्छी तरह जैसा डायरेक्शन मिले करते जाना।
ओम शांति। सभी पहले तो स्ट्रेट होके बैठ जाएंगे, बैठेंगे कमर सीधी,
बैठे बैठे करें,
बैठ करके अभी हाथों को ऐसे रखना है सामने, और जैसे जैसे मैं ग्रेटिट्यूड के लिए बोलते जाऊंगी तो एक एक जो फिंगर है वो ओपन करते जाएंगे। ठीक है, आंखें चाहे तो आप बंद भी कर सकते हैं ताकि फुल कॉन्सेंट्रेशन रहे आपका और विजन बना सके। तो अपने हाथों को ऐसे जोड़ लेंगी और एक एक फिंगर में नेक्स्ट बोलते जाऊंगी तब आपको एक एक फिंगर ओपन करना है। ठीक है, आईज क्लोज, डीप ब्रीथ, गहरी सांसें लेंगे, अपना पूरा ध्यान मस्तक पे एकाग्र करेंगे। मैं आत्मा एक एनर्जी चमकता सितारा भ्रिकुटी के मध्य, बिल्कुल क्लियर विजन। सबसे पहले मैं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा को मुझे अपनाने के लिए, मुझे श्रेष्ठ कार्य के चुनने के लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक फिंगर ओपन करेंगे, दिल से परमात्मा का शुक्रिया। अब प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन 5 तत्वों का दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नेक्स्ट, अपने इस हेल्दी शरीर के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह शरीर कितना अमूल्य है, एक एक ऑर्गन्स सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। अपने स्वस्थ हृदय, अच्छी आंखें, कानों, मुख के लिए नियमित रूप से कार्य करने के लिए इस शरीर का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नेक्स्ट, अपनी विशेषताओं को याद करें। जो भी आपकी विशेषताएं हैं, कलाएं हैं, जो परमात्मा की देन है, उस गॉड गिफ्ट के लिए, प्रभु प्रसाद के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस नेक्स्ट, इस ज्ञान सरोवर परिसर में आवास, निवास, भोजन आदि की व्यवस्था, ऑडियो, वीडियो एवं अन्य सुविधाओं के लिए सभी सेवाधारियों एवं परमात्मा का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी एक एक फिंगर्स ओपन करते जाएंगे। अपनी फैमिली, हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए परमात्मा को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। विश्व की हर एक आत्मा को, मिलियंस आत्माओं को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नेक्स्ट, कभी किसी आत्मा को जाने अनजाने दुख दिया हो, तकलीफ दी हो, उस आत्मा से क्षमा मांगेंगे एवं जिनको दुख दिया है, जिन्होंने दुख दिया है उनसे क्षमा लेंगे। उन आत्माओं का जिन्होंने हमें क्षमा दी, क्षमा करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हाथों में कमल पुष्प बन गया है, लोटस ओपन हो गया है, तो ये जीवन जो परमात्मा की देन है, इस पवित्र जीवन के लिए फिर से दिल से साथ में कहेंगे परमात्मा को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह बीच बीच में अपने सारे नियामतें गिने एवं दिल से परमात्मा का शुक्रिया करें। ओम शांति। अभी दोनों हाथों को रब करके फील करेंगे, वाइब्रेशंस, हीलिंग वाइब्रेशंस फील करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।
वाइंड अप करते हैं। लास्ट मेथड, थॉमस एडिसन अल्वा। जब छोटे थे, स्कूल जा रहे थे, एक दिन वो एक लेटर लेकर आए, मदर को दिया, बोला कि प्रिंसिपल ने लेटर दिया है, आपको पढ़ना है। मदर ने लेटर पढ़ा और आंखों से आंसू आ गए। थॉमस एडिसन ने पूछा, क्या लिखा प्रिंसिपल ने? तो मदर ने कहा, प्रिंसिपल ने लिखा है आपका बच्चा बहुत जीनियस है, बहुत अच्छा पढ़ता है, मेंटली स्ट्रांग है, हम उसको पढ़ा नहीं सकते, आप इसको घर पर पढ़ाओ। मदर ने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया और हम सभी जानते हैं कि बाद में वो वर्ल्ड का फेमस साइंटिस्ट बना, थॉमस एडिसन अल्वा। जब मदर चली गई, एक बार थॉमस एडिसन अलमारी साफ कर रहे थे, इनको वही लेटर मिला जो प्रिंसिपल ने बचपन में दिया था। वो लेटर थॉमस एडिसन ने पढ़ा, उसमें लिखा था प्रिंसिपल ने, आपका बच्चा बहुत वीक है, कमजोर है, हम नहीं पढ़ा सकते। मदर ने क्या किया? मदर ने उस लेटर को पॉजिटिव कर दिया और वाइब्रेशन जो उस बच्चे को मिले, वो वर्ल्ड का लीडिंग साइंटिस्ट बन गया। तो रोल आखिरी में आज के समय वाइब्रेशन का है। हर चीज अब एंड हो रही है, वाइब्रेशन पर हो रही है। जहां हम कुछ नहीं कर सकते, वहां वाइब्रेशन दो। कुछ तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है, वहां वाइब्रेशन दो। और जितने हमारे वाइब्रेशन पावरफुल होंगे, एनर्जी जाएगी और वो उस आत्मा को हील करेगी। आज बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से किसी को करेक्ट नहीं कर सकते, वो अब आउट हो गया। अब हमें बिना बोले उस आत्मा को, उस व्यक्ति को ठीक करना है तो वाइब्रेशन देना पड़ता है। मुझे बहुत अच्छा अभी एकदम क्लिक किया, डॉक्टर मार्क एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट रहे हैं और वो जा रहे थे फ्लाइट में एक मीटिंग अटेंड करने, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जहां उनको अवार्ड मिलना था। फ्लाइट में प्रॉब्लम आया, फ्लाइट को लैंड किया गया। बाहर आए, एयरपोर्ट पे पूछा मुझे वहां जाना है उस सिटी में, कैसे जाऊंगा? वहां पर बताया गया 4 घंटे बाय रोड जाना पड़ेगा, बाय कार जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। डॉक्टर मार्क ने कार हायर की और चलाना शुरू किया। आधे रास्ते पर फिर आंधी तूफान आया और रास्ता खो दिया। कार एक जगह पहुंच गई जहां कुछ लाइट थी। अंदर गए तो देखा एक लेडी थी। वो लेडी ने डॉक्टर मार्क को अंदर बुलाया, चाय का कप दिया। चाय पीते पीते डॉक्टर मार्क ने देखा वो लेडी प्रार्थना कर रही है और एक बच्चा लेटा हुआ है। प्रार्थना पूरी होने के बाद डॉक्टर मार्क ने पूछा, आप क्या कर रहे थे? लेडी को नहीं पता कि ये डॉक्टर मार्क है। लेडी ने कहा, मेरे बच्चे को ऐसा रेयर कैंसर है जिसका ट्रीटमेंट केवल डॉक्टर मार्क कर सकते हैं, मैं वहां नहीं जा सकती, मैं प्रार्थना कर रही थी कि डॉक्टर मार्क यहां आ जाएं, और डॉक्टर मार्क वहां पहुंच गए। तो हमारा पर्सनल बिलीफ सिस्टम, फेथ, पॉजिटिविटी हमारे लाइफ के हर सिचुएशन को ठीक करता है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।